نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج ہم ایک نئی کتاب کا آغاز کریں گے. کتاب کا نام ہے نیکی کے سفیر، دلچسپ اور عبرت آموز تاریخ کے واقعات. نیکی تو نیکی ہوتی ہے، لن تنالوا البر بر، اور اسی طرح سے ایک اور نیکی کے لیے لفظ قرآن میں آیا، کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ لیس البر، ٹھیک ہے، 178 البقرہ. تو نیکی تو نیکی ہے، بس وہ کام جو آپ کو خوشی دے، جو اللہ نے کہہ دیا کر کے دکھا دیے. اور سفیر سفر سے ہے. سفر ایک تو وہ سفر ہے جو آپ اور میں کرتے ہیں، کون سا؟ ٹریولنگ کے نام پہ. تو سفیر سفر کرنے والا، لیکن سفر بھی ہوتا ہے سین کی زیر کے ساتھ. اسفار کا لفظ سنا ہوگا، سکرولز کو کہتے ہیں. سفر، سفیر، سکرول، یہ سب کٹھا ایک ہی لفظ ہے. کہ سفیر وہ شخص ہوتا ہے جس کو انگلش میں ہم امبیسیڈر کہتے ہیں. ایک ملک کا پوائنٹ آف ویو دوسرے ملک تک پہنچانا، دو ملکوں کے بیچ میں رہنے والوں کے بیچ میں ایک کوآرڈینیٹر، اس کو سفیر کہتے ہیں. نیکیوں کا سفیر اس لفظ سے کیا مراد ہے؟ کہ کچھ لوگ اپنے وجود کے ساتھ چلتے پھرتے سفیر ہوتے ہیں. ان کو کوئی لقب ملے نہ ملے، ان کو وزیر یا سفیر یا امبیسیڈر کہا جائے نہ کہا جائے، لیکن ان کی ذات سے نیکی پھیلتی ہے. دعا کیجیے اللہ مجھے آپ کو نیکیوں کا سفیر بنا دے. اور اسی سے پھر ہم اسلام کے سفیر بن جائیں گے، پھر ہم امبیسیڈرز آف اسلام بنیں گے. اور ہم میں سے ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت بڑی خوبی تھی وہ کیا تھی؟ کہ آپ نے ہر صحابی کو نیکیوں کا سفیر بنا دیا تھا. آپ خود بھی چلتے پھرتے قرآن تھے، آپ کا اخلاق اتنا خوبصورت تھا کہ آپ اس کی روشنی میں لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے تھے. اسی طرح آپ کے اصحاب کی یہ کامن خوبی نظر آتی ہے کہ وہ بھی دوسروں کی خیر کے بہت سے حریص تھے. تو یاد رکھیے کہ نیکیوں کے سفیر بننے کے لیے دل میں طلب ہونی چاہیے، پھر تڑپ ہونی چاہیے، پھر دوسروں کو کچھ دینے کا شوق ہونا چاہیے. وَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسُ فَيَمْكُثُ، سورت رات کی آیت، کہ جو دوسروں کو نفع دے گا وہی بچے گا. پھر اسی طرح نیکیوں کا سفیر بننے کے لیے انسان کو خود نیکی کا خوگر اور قدردان بھی ہونا چاہیے. جب آپ اپنی ذات کے ساتھ نیکیوں کو باندھ لیتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ آپ دوسروں کو بھی دینے لگتے ہیں. تو بنیادی طور پر یہ کتاب عربی کی ایک بک ہے، ڈاکٹر محمد عبد الرحمن العرفی انہوں نے لکھا. اور یہ آج کے دور میں عرب کی دنیا کے بہت معروف رائٹر بھی ہیں، ٹیچر بھی ہیں، اور ان کی بکس عموماً انسانی زندگی کے ساتھ واقعات جو ہیں اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. ان کی آپ دیکھیں گے تو آپ کو اور بھی بڑی خوبصورت بکس ملیں گی. یہ جو کتاب ہمارے سامنے، اس کا ترجمہ مولانا تنویر احمد صاحب نے کیا ہے، اور دارالسلام نے اس کو بہت ہی خوبصورت انداز میں پرنٹ کیا ہے. آپ کے سامنے بک ہے تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، بک سے زیادہ کارڈز لگ رہے ہیں، فلی کلرڈ بک ہے. اور آپ اس کے پیپر کی کوالٹی دیکھیں، ہر پیپر ایک کارڈ جتنی تھکنیس پہ ہے، یعنی کسی کو گفٹس میں دینے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت چیز ہے. تو بنیادی طور پہ یہ کتاب کیا ہے؟ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ہم آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں جنتی یا فلاں پہ ضروری رحم ہوا، لیکن تاریخ میں ہمیشہ ہی کچھ ایسے لوگ موجود رہے جو دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں. تو یہ کتاب اصل میں انسانی تاریخ کے ان خوبصورت کرداروں کی کہانیوں کا مجموعہ ہے کہ جنہوں نے ذاتی زندگی میں یا اجتماعی زندگی میں کوئی ایسا کام کیا جو دوسروں کے لیے سامان عبرت بن گیا. تو کہہ سکتے ہیں کہ انسانی تاریخ سامان تفریح نہیں ہے، سامان عبرت ہے. ہر عقل مند آدمی جو ہے وہ ماضی سے سبق سیکھتا ہے، اور پچھلی نسلوں کے تجربوں سے آئندہ نسلوں کو اپنے لیے راستے متعین کرنے میں مدد ملتی ہے. قرآن کا بھی انداز ہم دیکھتے ہیں، قصص القرآن جس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے واقعات بھی بیان کیے، کہیں افراد کی باتیں پیش کی، کہیں بغیر نام لیے کچھ لوگوں کی غلطیاں بیان کی کہ اب تم اس کو نہ دہرانا. तो लिहाजा इस किताब में हम बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में देखेंगे, और मैं इंशाल्लाह आपके साथ पूरी कहानी कहानी की तरह पढ़ूंगी, बोल के सुनाऊं या अपने लफ्जों में बताऊंगी तो वो भी अच्छा होगा, लेकिन मैंने आपकी उर्दू भी ठीक करानी है। तो एक तो है कि आपको कहूँ बुक बंद कर दें, मैं अपने लफ्ज़ों में सुनाऊँ और आप घर जाके पढ़ें, तो डबल काम होगा। तो लिहाजा हम इसको कहानी के तौर पे पढ़ेंगे, और हर कहानी के पढ़ने के दौरान और उसके एंड पे कुछ ना कुछ फिर अमल के नुक्ते अपने लिए लेंगे, और इंशाल्लाह इससे आप फील करेंगे कि हर स्टोरी के बाद आपका जहन किसी दूसरी तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो बुक मेरे साथ से पढ़ना चाहते हैं इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला की तौफीक से हम शुरू करेंगे। इसकी पहली कहानी का नाम है नेकी का सफ़ीर। एक शख्स की कहानी है बुनियादी तौर पे, और इसको पढ़ने के बाद एंड पे आपका दिल बहुत बोझल हो जाएगा, ये मैं आपको अभी से बता दूं। और असल में हमने जज्बात के साथ इमोशनली और फील करते हुए इन सारी कहानियों को पढ़ना है, कि हम में से हर एक अपने आप को खड़ा करके देखे कि वो किधर खड़ा है। तो आइए देखते हैं कि पहली कहानी क्या है, नेकी का सफ़ीर। मेरी उम्र इस वक्त 30 के लगभग होगी, जब हमारे यहाँ पहला बेटा पैदा हुआ। वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं हस्बे मामूल रात गए तक अपने दोस्तों के साथ एक फार्म हाउस में बैठा गप्पे थांकता रहा। रात भर हम फजूल और ला यानी बातें करते रहे। ये गीबत चुगली बोलियों ठोलियों और ठट्ठे मजाक से भरपूर रत जगा था। रत जगा किसको कहते हैं? रातों को जागना। हम आवारा कह कहे लगाते रहे। इस रात तो मेरी शरारतें उरूज पर थीं। नकलें उतारने का फन को मुझसे सीखे। किसी भी शख्स की नकल उतारने में मुझे चंद लम्हे लगते, और मेरे दोस्त खूब हंसते। आवाज़ तब्दील करके इस शख्स जैसी आवाज़ भी निकाल लेता था जिसकी नकल उतार रहा होता। शायद ही कोई दोस्त मुझसे बचा हो जिसकी मैंने नकल ना उतारी हो। क्या ये सब कुछ जो कहा जा रहा है ये अच्छी आते हैं? नहीं है। तो अमल की बातें साथ ही साथ लिखी है कि इंसान जब दोस्तों की महफिल में होता है तो बास दफ़ा भूल जाता है कि मैं कौन हूँ। याद रखिए हमारे किरामन कातिबीन, या लमून अमा तफलून। अल्लाह ताला ने कह दिया कि इन्नल अबरार लफी नाइम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। सूरह इन्फितार में अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे दाएं और बाएं फरिश्ते बैठे हैं जो लिखते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि जवानी का वक्त अमूमन लोग आवारगी में गुजार देते हैं, बेकारगी में गुजार देते हैं। और इस एक पैराग्राफ में आप देखिए कि गीबत चुगली दूसरों का मजाक उड़ाना, मुझे ये सारी बातें पढ़ते हुए सूरत, बोलिए, सूरत अल-हुजरात याद आ रही थी कि कैसे अखलाकी तौर पे इंसान पीछे रह जाता है जबकि वो इन चीज़ों का ख्याल नहीं करता। तो मुझे आपको नहीं करना ऐसा। क्या दूसरों की नकलें उतारनी चाहिए? नहीं उतारनी चाहिए। अच्छा, क्या रातों को जागना चाहिए? कुरान तो कहता है तजाफ जनूब हम अनिल मदा जी। तो सवाल ये कि जागना नहीं, जाग के करते क्या हैं, ये देखने वाली बात है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि इनका ये जो दूसरों का मजाक उड़ाने वाला अंदाज है ये भी ठीक नहीं। आइए देखते हैं कि अब इससे आगे होता क्या। इस रात मुझे अनोखी शरारत सूझी। शाम के वक्त मैं बाजार से गुजर रहा था। एक नाबीना बाजार में भीख मांगता फिरता था। मैंने अपनी टांग इसके आगे कर दी। नबीना गदागर ने ठोकर खाई और गिर पड़ा। मेरी जानिब रुख किया, बेचारा बहुत बुड़बड़ाया और न जाने क्या क्या कहता हुआ चल दिया। इधर मैं इस हरकत पर नादिम होने की बजाय कह कहे लगा रहा था। ये कब होता है? जब बुराई की खूबी खत्म हो जाए, यानी इंसान किसी चीज़ को बुरा समझना भी छोड़ दे। रात गए घर लौटा तो अहलिया इंतज़ार में थी। इस वक्त उसे मेरी अशद ज़रूरत थी। हमें फौरन हॉस्पिटल जाना था। मुझे देखकर इसने बड़े कर्ब से कहा, राशिद तुम कहाँ थे? मैंने तंजिया जवाब दिया, ज़रा मरीख पर गया था। और कहाँ था? वहाँ अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। सवाल है क्या ये मरीख पर था, यानी उस सैारे पे? तो झूठ है ना, तो क्या इस तरह झूठ बोल सकता है इंसान? नहीं बोल सकता। मेरी अहलिया ने बमुश्किल कहा, राशिद मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, लगता है विलादत का वक्त करीब है। इसके आंसू निकल आए। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने अपनी अहलिया से अच्छा बर्ताव नहीं किया। इन अय्याम में इसकी देखभाल करना और इसका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ था। काश मैं इन दिनों दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त ना गुजारता। मैंने ये ख्यालात जहन से झटक दिए, अहलिया को साथ लिया। फौरन हॉस्पिटल रवाना हो गया। रात गुजरती जाती थी, सुबह होने में थोड़ी देर बाकी थी। नर्सें मेरी अहलिया को वार्ड में ले गईं। मैं बाहर इंतज़ार करता रहा, फिर मुझ पर गुनूदगी छाने लगी। मैं सब्र ना कर सका, घर जाने का फैसला किया। अपना फ़ोन नंबर एक नर्स को दिया और कहा कि जब विलादत हो तो मुझे इत्तला कर देना। मैं घर आकर सो गया। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल से फ़ोन आया, मुझे बेटे की खुशखबरी दी गई। फौरन हॉस्पिटल पहुंचा, जच्चा और बच्चा यानी माँ और बच्चे के बारे में पूछा तो हॉस्पिटल वालों ने कहा इस लेडी डॉक्टर से मिल लो जो इस केस की इंचार्ज थी। मैं बड़े जोश व खरोश में था, बेटे को फौरन देखने के लिए बेताब था। मैंने कहा डॉक्टर से बाद में मिलूंगा, पहले ये बताओ कि मेरा बेटा कहाँ है, मैं इसे देखना चाहता हूँ। जवाब मिला पहले डॉक्टर से मिलो। मैं डॉक्टर से मिला, इसने मुझे बैठने का इशारा किया, लंबी तमहीद बांधी। सोची क्या हुआ होगा, मुसीबतों और परेशानियों का जिक्र किया, तकदीर पर राजी रहने की फजीलत जताई। फिर उसने अचानक और भयानक खबर दी, बच्चे की आंखों में सोजिश है, ऐसा लगता है कि वो कभी देख नहीं सकेगा, वो अंधा है। ये सुनते ही मेरा सर झुक गया, रात वाला नाबीना आंखों के सामने आ गया जिससे मैंने ठट्ठा किया था। भला अब मैं क्या कह सकता था, डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया और कमरे से बाहर आ गया। मेरा रुख अहलिया के कमरे की तरफ था, वो सब्रो शुक्र का नमूना बनी बैठी थी। इसने मुझे बारहा नसीहत की थी कि लोगों का मजाक ना उड़ाया करो, गीबत से परहेज किया करो और चुगलियां ना खाया करो, लेकिन मैं हर बार इसकी नसीहत एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता था। अगले दिन हम हॉस्पिटल से घर आ गए, मैंने बेटे का नाम सालिम रखा। मेरे ख्यालों की स्क्रीन पर अहलिया की नसीहतें कुछ देर तक चमकीं और फिर बुझ गईं। सच पूछें तो मुझे सालिम से कोई मोहब्बत नहीं थी, मैंने कभी इसकी तरफ तवज्जो भी ना दी, बस ये समझ लिया कि वो हमारे घर में मौजूद ही नहीं। जब वह रोता मैं उठकर दूसरे कमरे में चला जाता, लेकिन जहाँ तक मेरी अहलिया का ताल्लुक था वो इससे बहुत प्यार करती थी, इसका बेहद ख्याल रखती थी। मुझे सालिम से नफरत तो नहीं थी मगर प्यार भी नहीं था। वक्त की रफ्तार के साथ साथ सालिम बड़ा होता गया, इसने रींगना शुरू कर दिया। इसका रींगना आम बच्चों से बहुत मुख्तलिफ था। जब इसकी उम्र 1 साल से ज़्यादा हुई तो इसने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया। इसके चलने से साफ पता चलता था कि पाँव में लंगड़ापन भी है। सालिम की माजूरियों की वजह से मेरे जहन के बोझ में इजाफा हो गया। मेरे यहाँ सालिम के बाद 2 और बेटे उमर और खालिद पैदा हुए। वक्त कितनी तेज़ी से गुजर जाता है इसका अंदाज़ा ही ना हुआ। साल हर साल गुजर गए, मेरे बच्चे बड़े हो गए, मगर मेरे शब रोज़ में कोई फ़र्क ना आया। मैं घर में टिकता ही ना था, हमेशा दोस्तों की महफिलों में घुसा रहता। इन महफिलों की असल रौनक मैं ही था, एक मसखरा जो इन्हें हर आन नई नई शोखियों से हंसाता रहता था। मेरी तमाम तर कोताहियों के बावजूद एक हस्ती ऐसी थी जो मुझसे कभी मायूस नहीं हुई। इसने हमेशा मेरी बेहतरी के लिए दुआ की, कभी नाराज़गी का इजहार नहीं किया। आपको बताऊं वो कौन थी, वो मेरे बच्चों की माँ थी, मेरी अहलिया, जो रात गए तक मेरा इंतज़ार करती थी। मैं सालिम के सिवा दूसरे दोनों बेटों से शदीद मोहब्बत करता था, मगर सालिम से मेरा ताल्लुक वाजबी सा था, बल्कि सच पूछें तो ना होने के बराबर। मैंने इसे बहुत कम बुलाया था, इससे बेहद कम बात की थी, बस यही एक बात थी जिस पर मेरी बीवी कुढ़ती थी। सालिम और इसके भाई अब स्कूल जाने की उम्र में थे, मैंने सालिम को नाबीना बच्चों के स्कूल में दाखिल करा दिया। फिर वक्त का एहसास ही ना हुआ, मेरा काम दफ्तर जाना, खाना पीना, सोना और दोस्तों के साथ रात रात भर जागना था। वो जुमे का दिन था, मैं 11 बजे सोकर उठा। आज मैं मामूल से पहले ही उठ गया था, एक दावत वलीमा में शिरकत करनी थी, इसलिए मैंने नया लिबास पहना, इत्र लगाया और घर से बाहर जाने लगा। मैं अपने कमरे से निकला, मैंने देखा सालिम जारो कितार रो रहा है। मेरे कदम रुक गए, मेरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने सालिम को रोते देखा। 10 साल बीत गए थे लेकिन मैंने कभी इसकी तरफ तवज्जो ही ना की थी, कभी इसे मुड़कर भी ना देखा था। अब भी ख्वाहिश यही थी कि इसके पास से तेज़ी से निकल जाऊं। वो अपनी वालिदा को बुला रहा था, न जाने वो कौन सा जज्बा था कि मैं इसकी तरफ लबकार पूछा, सालिम क्यों रो रहे हो? इसने मेरी आवाज़ सुनी तो रोना बंद कर दिया। जब इसे एहसास हुआ कि मैं इसके आसपास ही, तो इसने मुझे टटोलने के लिए अपने हाथ दाएं बाएं लहराए और ये जानने की कोशिश की कि मैं इसके करीब तो नहीं हूँ। जब इसे महसूस हुआ कि मैं इसके करीब ही खड़ा हूँ, तो वो एक तरफ सिमटने लगा। मुझे एहसास हुआ कि वो मुझसे दूर होने की कोशिश कर रहा है। मैंने इसके करीब तर होना चाहा, मगर इसने रुख फेर लिया। शायद वो मुझे मेरी बेहिसी, लातअल्लुकी और बेगानगी का एहसास दिला रहा था। क्या आप इतनी मुद्दत कहाँ रहे? 10 साल के बाद मेरा ख्याल आया है। मैंने इसका पीछा किया तो वो अपने कमरे में चला गया। मैं भी इसके पीछे पीछे गया। मैंने फिर पूछा, सालिम बेटे क्यों रो रहे थे? मगर इसने रोने का सबब बताने से इनकार कर दिया। अब मैं इसके करीब तर हुआ, इसका नन्ना सा हाथ पकड़ा, प्यार से पूछा, बेटे बताते नहीं क्यों रो रहे हो? मेरे इसरार पर सालिम ने रोने का सबब बयान करना शुरू किया। जूं जूं इसकी बात सुनता गया, मेरे दिल की हालत गैर होती गई। मैं हक्का बक्का रह गया, मेरा सांस तेज हो गया। आपको बताऊं कि इसके रोने का सबब क्या था? आप भी सोचें, इस उम्र में बच्चे क्यों रोते हैं? अमूमन कोई खिलौना नहीं मिला, किसी ने कोई रबड़ ले लिया, या आइसक्रीम खानी और कोई खाने नहीं दे रहा। लेकिन आप देखिए कि इस बच्चे का गम कितना मुख्तलिफ था और सबब क्या था। क्या आज इसका भाई उमर लेट हो गया था? वो इसे वक्त से पहले मस्जिद में ले जाया करता था। चूंकि ये जुमे का दिन था, इसलिए इसे हदशा था कि ताखीर की वजह से शायद इसे पहली सफ में जगह न मिले। फिर इसने उमर को बुलाया, फिर वालदा को आवाज़ दी, लेकिन कोई ना आया तो वो रो दिया। मैंने इसके आंसू देखे जो इसकी बेनूर आंखों से बरसते जा रहे थे। मैं इसकी बकिया गुफ्तगू न सुन सका। आगे बढ़कर इसकी रोशनी से खाली आंखों पर हाथ रख दिए और पूछा, सालिम क्या तुम सिर्फ इस वजह से रो रहे थे कि मस्जिद जाने में देर हो गई है? इसने जवाब दिया, जी हाँ। इंसान बहुत गाफिल और कमज़ोर है, वो क्या जाने अगले लम्हे की किस्मत में क्या है। अपने नाबीना लखते जिगर से बात करने की ये घड़ी ऐसी इनकलाब अंगेज थी जिसने आनन फानन मेरी जिंदगी का धारा बदल दिया। मेरी जिंदगी में इनकलाब आ चुका था। मैं अपने दोस्तों को भूल गया, ये ध्यान ही न रहा कि मुझे दावते वलीमा में शिरकत करनी है। मैंने सालिम को मुखातिब किया, सालिम परेशान न हो, क्या तुम्हें मालूम है कि आज तुम्हारे साथ कौन मस्जिद जाएगा? वो कहने लगा, यकीनन उमर जाएगा, मगर वो तो हमेशा देर कर देता है। मैंने कहा, फिक्र न करो, आज तुम्हारा बाप तुम्हें मस्जिद छोड़ते जाएगा, आज मैं तुम्हारी उंगली पकड़कर चलूंगा। सालिम हैरान रह गया, इसे यकीन न आया। इसे गुमान हुआ कि मैं इसे मजाक कर रहा हूँ। इसने थोड़ी देर सोचा, फिर इसकी हिचकियाँ बंद गईं। मैंने इसके आंसू पोंछे, बड़ी मोहब्बत से बाजू थामा, फिर इसे गाड़ी की तरफ ले गया, मगर इसने गाड़ी में बैठने से इनकार कर दिया। कहने लगा, पिदरे बुजुर्गवार यानी बाप, मस्जिद करीब है, मैं पैदल जाना चाहता हूँ ताकि मुझे हर खर कदम पर सवाब मिलेगा। आज कितने हैं जो आंखों वाले भी ये सवाब नहीं लेते। अल्लाह हू अकबर। मुझे याद नहीं था कि मैं आखिरी बार कब मस्जिद गया था, मगर ये पहला मौका था कि मैं नदामत से ज़मीन में गड़ गया और मुझे अपने मुकद्दस परवरदिगार से इतनी देर तक ला ताल्लुक रहने पर बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मस्जिद नमाजियों से भरी हुई थी। मैंने ज़रा सी कोशिश की, सालिम के लिए पहली सफ में जगह मिल गई। हमने खुतबा जुमा सुना, नमाज के लिए खड़े हुए। सालिम मेरे पहलू से लगा खड़ा था, बल्कि सच पूछिए तो मैंने इसके साए में खड़े होकर नमाज अदा की। नमाज ख़त्म हुई तो सालिम ने मुझसे कहा, ज़रा कुरान करीम दीजिए। मैं हैरान हुआ कि ये कुरान कैसे पढ़ेगा, ये तो नाबीना है। मैं सोच रहा था कि इसकी बात अनसुनी कर दूं, मगर मैंने रद्दो कद में पढ़ने की बजाय, यानी बहस करने की बजाय, आगे बढ़कर कुरान पाक का नुस्खा लिया और इसके हवाले कर दिया। अब इसने कहा, सूरह कहफ निकाल दीजिए। मैंने कुरान के और आखे मुबारक पलटने शुरू किए, चंद सफहात पलटे, सूरह कहफ सामने आ गई। इसने कुरान करीम मेरे हाथ से लिया, अदब और वक्कार से अपने सामने रखा और सूरत कहफ की तिलावत शुरू कर दी। इसकी आंखों के दिए बुझे हुए थे, मगर फिर भी पूरे सुकून और इत्मीनान से तिलावत किए जा रहा था। अब मुझ पर मुनकशिफ हुआ, यानी इस बात का इंकशाफ हुआ कि हरचंद वो देख नहीं सकता, मगर इसे पूरी सूरत जुबानी याद है। मुझ पर हैरतों के दरीचे खुलते चले गए। मुझे शदीद शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने भी कुरान पाक का नुस्खा लिया, सूरत कहफ निकाली। मेरे आसाब पर राशा सीमाब तारी हो गई, जैसे पारा होता है ना मरकरी, तो वो ऐसे हल्का हल्का मूव करता है, तो राशा मीन थोड़ा सा शेक होना, यानी मैं कांपने लगा, ये कह लीजिए। मैंने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ता रहा, देर तक पढ़ता रहा। जूं जूं पढ़ता गया, मेरी आंखों से गफलत के पर्दे उठते चले गए। फिर मैंने तड़प कर अपने रब से अपनी हिदायत की दुआ मांगी। मैं अपने आप पर काबू न रख सका, माजी का गुबार छट गया, हाफ़िज़े के पर्दे पर बीते हुए वाक़या झिलमिलाने लगे, अपने गुनाह याद आते चले गए, और खिफ़त व शर्मसारी ने ऐसे कचोके लगाए कि मैं बच्चों की तरह बिलकने लगा। बाज़ लोग सुन्नतें अदा कर रहे थे, मुझे इनसे बड़ी खिजालत महसूस हुई, यानी अनकम्फर्टेबल फील हुआ। मैंने बतकल्लुफ़ कोशिश की कि अपने गिरिए पर काबू पा लूँ, यानी कि मैं दूसरों के सामने रोने न लग जाऊँ ऊंची आवाज़ में। मेरी आवाज़ मध्यम हो गई। अब मैं आहें भर रहा था, मेरे हलक से सिसकियाँ निकल रही थीं। अचानक एक नन्ना सैयदे बैजा, यानी सफ़ेद हाथ, मेरा चेहरा साफ करने लगा। इसने मेरी आंखों से आंसू पोंछ डाले। ये मेरा बेटा सालिम था, मैंने इसे सीने से लगा लिया, इसकी तरफ मोहब्बत भरी नज़रों से देखा और अपने दिल में कहा, सालिम तुम अंधे नहीं हो, अंधा तो मैं हूँ। फिर हम वापस घर की तरफ रवाना हुए। अहलिया सालिम की वजह से मगमूम बैठी थी, यानी गमजदा थी। इसे मालूम न था कि आज सालिम को जुमा पढ़ाने के लिए मैं साथ ले गया था। जब इसे पता चला कि हम दोनों बाप बेटा इकट्ठे मस्जिद गए थे, तो इसका कलक फौरी मुसर्रत में तब्दील हुआ, यानी जो उसकी फिक्र थी, खौफ था, वो खुशी में बदल गया। इसके बाद मेरी ज़िंदगी में ऐसा इनकलाब बरपा हुआ कि इस दिन से मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। मैंने बुरी सोसाइटी तरक कर दी। अब मैंने मस्जिद के नमाजियों में सबसे अच्छे और मुत्तकी इंसानों को अपना दोस्त बना लिया। मैंने ईमान की हलावत चखी। इन नेक नेहाद दोस्तों से दीन के हवाले से बहुत सी अहम बातें सीखी। फिर तो ये हालत हो गई कि कोई हलका दर्स और कोई दीनी प्रोग्राम कहीं भी होता, मैं इसे कभी गैर हाजिर नहीं रहता था। कुरान करीम की तिलावत मेरा मामूल बन गई। महीने में कम से कम एक बार कुरान करीम ज़रूर ख़त्म करता। मेरी ज़ुबान पर अल्लाह ताला की हमदो सना जारी रहती। अपना माजी याद आता तो और ज़्यादा कसरत और तवज्जो से ज़िक्र अस्कार करता कि शायद अल्लाह ताला मेरे साबिका गुनाह माफ़ फरमा दे। मैंने लोगों के साथ कितना दिल आज़ार सलूक किया था, इनकी नकलें उतारी थीं, इनका मजाक उड़ाया था, इन पर आवाज़ें कसे थे, इनके दिल के शीशे तोड़े थे। आह, मैं किस तारीक वादी में भटकता फिरता था। अब मैं अपने घर वालों से बहुत करीब हो गया। मेरी अहलिया के चेहरे पर रौनक आ गई। कहाँ इसका वो उदास चेहरा जब वो मेरे बारे में मगमूम और मुतफक्किर रहती थी, यानी गमजदा और फिक्रमंद रहती थी, और कहाँ अब इसका मुस्कुराहटों की शमीम व शबनम लौटाता हुआ ज़िया बार मुखड़ा, यानी वो चेहरा जिस पे चमक हो और मुस्कुराहट हो, यानी ज़ाहिर है उसके अंदर खुशी आई तो उसके चेहरे पे भी झलकने लगी। और फिर मेरा सालिम, इसकी खुशियों का तो कोई ठिकाना नहीं था। गर्मी बहार आ गई, मेरा ज़्यादा वक्त सालिम के साथ गुजरता और मैं अल्लाह ताला के इनामात पर शुक्र अदा करता था। एक दिन कुछ साथियों ने कहा कि हम अल्लाह के दीन की दावत के लिए दूर किसी मुल्क में जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। मैं दावत और तबलीग जैसे अजीम शान फरीजे से बेखबर था, ज़मीन पर बोझ बना बैठा था। कभी भूले से भी ख्याल ना आता था कि दावत और तबलीग के लिए नकलो हरकत करनी चाहिए। ज़रा मुतरद्दत हुआ, यानी ज़रा सेल्फ डबल माइंडेड हुआ, मगर इनका इसरार बढ़ा। मैंने इस्तखारा किया और अहलिया से मशवरा लिया। वो तो मुद्दतों से मुतमन्नी थी, यानी उसकी तो ये तमन्ना थी کہ میں دین قیم کا داعی بن سکوں۔ میرا خیال تھا کہ وہ میری روانگی پر راضی نہیں ہوگی، مگر معاملہ برعکس نکلا۔ میں اس کے ایمان افروز رد عمل پر بہت خوش ہوا۔ اس نے میری حوصلہ افزائی کی، کہا کہاں وہ ماضی کے اسے اطلاع کیے بغیر فسق و فجور کے لیے مختلف ملکوں میں جایا کرتا تھا، اور کہاں یہ زمانہ حال کہ اسلام کا پیغام عام کرنے جا رہا تھا۔ میں نے سالم سے بات کی، اسے اپنے سفر کا مقصد بتایا اور پوچھا تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے بازو میرے گلے میں ڈال دیے اور کہا ابو، دعوت و تبلیغ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، آپ دعوت اللہ کے لیے ضرور جائیے۔ بالآخر میں تبلیغی دورے پر روانہ ہو گیا۔ گھر سے نکلے 3 مہینے سے اوپر ہو چکے تھے۔ اس دوران گھر والوں سے کئی دفعہ فون پر بات چیت کی، مگر نہ جانے کیوں سالم سے کوئی بات نہیں ہو سکی۔ جب بھی بات ہوتی تو وہ اسکول گیا ہوتا یا مسجد یا سو رہا ہوتا۔ میری تمنا تھی کہ اس کی آواز سنو، باقی بچوں سے بات ہو گئی، مگر سالم کی صدا سننے کو ترس گیا۔ جب بھی اہلیہ کو فون کرتا وہ مجھے سالم کی باتیں سناتی۔ گھر میں خوشیوں کا جمگھٹا تھا۔ پھر ایک دن ہم نے واپسی کا ارادہ کیا۔ میں نے اہلیہ کو فون کیا کہ میں واپس آ رہا ہوں، بچوں کا کیا حال ہے، سالم کیسا ہے؟ آج میں نے محسوس کیا کہ اس کا لہجہ بدلا ہوا ہے۔ وہ شوق اور بے تابی جس کی لپیٹ میں رہ کر وہ مجھ سے باتیں کرتی تھی، آج معدوم تھی۔ معدوم یعنی عدم، ختم تھی۔ میں نے کہا سالم کو میرا سلام کہنا اور بتانا کہ میں آ رہا ہوں۔ اہلیہ انشاءاللہ کہہ کر خاموش ہو گئی اور فون بند ہو گیا۔ میں گھر واپس آیا، دروازے پر دستک دی۔ چشمے تصور سے دیکھ رہا تھا کہ سب سے پہلے سالم میرا استقبال کرے گا، دروازہ بھی وہی کھولے گا۔ لیکن مجھے بڑا تعجب ہوا کہ سالم کی بجائے میرا 4 سالہ بیٹا خالد بابا بابا کہتا ہوا میرے ہاتھوں میں جھول گیا۔ اس روز نہ جانے کیوں مجھے سینے میں گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، گھر میں داخل ہوا، بی بی استقبال کے لیے آگے بڑھی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا نظر آیا، ہر چند چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر اس سے تسنن اور بناوٹ چھلک رہی تھی۔ میں نے پوچھا خیریت تو ہے، تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگی نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اور پھر اچانک سالم کا خیال آیا، سالم کدھر ہے؟ اہلیہ نے سر جھکا لیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کی دھاریں بہنے لگیں۔ میں چیخ اٹھا، سالم سالم کہاں ہے؟ میرا بیٹا خالد آگے بڑھا اور توتلی زبان میں کہنے لگا، بابا سالم جنت میں چلا گیا، اللہ کے پاس۔ میری اہلیہ کے صبر و قرار کا پیمانہ چھلک پڑا، وہ بلک بلک کر رونے لگی اور شدید صدمے کے مارے نڈھال ہو گئی۔ میں کمرے سے نکل آیا، اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا، پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ نہیں جہان محبت میں اشک بھی بیکار، یہ کام آتے ہیں دل کی لگی بجھانے میں۔ معلوم ہوا کہ میرے واپس آنے سے 2 ہفتے پہلے سالم کو بخار ہوا تھا۔ اہلیہ نے اسے ہسپتال داخل کرایا، ماہر ڈاکٹروں سے علاج کرایا، مگر مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی بخار تیز ہوتا گیا۔ ایک دن اس نے آخری ہچکی لی اور اس کی پاکیزہ روح قفص انصری سے پرواز کر گئی۔ قفص کہتے ہیں یہ بت جسم، جو ہمارا جسم ہے، یعنی اس جسم سے نکل گئی۔ یہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا، کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا۔ تو یہ تھا نیکی کا سفیر، کیا کیا اس نے۔
کبھی کبھی بچے جو تھے وہ ماں باپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں، تو اس میں سالم جو تھا وہ اپنے باپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں۔
جی بالکل، یعنی عموماً تو ماں باپ بچوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں نا، لیکن کبھی کبھی کچھ بچے ماں باپ کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سارے پوائنٹس آپ لکھیں گے۔
سالم کا باپ تو اس کی پس بچوں نہیں دیتا تھا، کیونکہ اس کی ماں نے اس پہ تھی توجہ دی، اس کو دین کا اتنا اچھا ہی سکھایا۔
جی جزاک اللہ خیر۔ ماں کا کردار ہے کہ بعض دفعہ لوگ شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ باپ توجہ نہیں دیتے، باپ کاروبار میں لگے رہتے ہیں، یا بعض دفعہ باپ جو ہوتے ہیں وہ دین سے ذرا سا دور ہوتے ہیں، تو اکثر مائیں یہ شکوہ ہی کرتی رہ جاتی ہیں कि हमारे शौहर बच्चों को तवज्जो नहीं देते। अगर देखिए इस केस में सालिम की माँ भी यही करती तो फिर बच्चा बिगड़ जाता ना। तो इससे आपके मेरे लिए अमल है, हम सब के लिए। पहली बात एक है कि जिस तरह की आजमाइश में अल्लाह ने उस जोड़े को डाला, किसी को भी डाल सकता है। आपके घर में कौन पैदा हुआ है, उसकी आंखें हैं कि नहीं, वो खूबसूरत है, वो गोरा चिट्टा, ये किसका फैसला है? क्या ऐसे बच्चों से नफरत करनी चाहिए? क्या ऐसे बच्चों को दिल से दूर कर देना चाहिए? और आप देखिए कि उस शख्स का दिल जब दुनिया में अटका हुआ था ना, तो उसको बच्चा अच्छा नहीं लगता था। क्यों? इसलिए कि दुनियादार के जो बच्चे और माल है ना, उसका एसेट होता है, तो वो तो बेकार एसेट निकला। अब एक नाबीना बच्चा एक दुनियादार बाप को क्या देगा, राइट? लेकिन जो ही उसका दिल बदला तो वो बच्चा उसका सबसे बड़ा एसेट बन गया। कैसे? हिदायत का सोर्स। तो कभी भी मत सोचिए कि आपकी ज़िंदगी में जो आज बुरी चीज़ है वो कल अच्छी नहीं होगी। मुझे ये पढ़ाते हुए वो आयत भी याद आ रही है कि एहसान तकरहु शैयन वहुवा खैरुल लकुम। हो सकता है कोई चीज़ तुम्हें बहुत बुरी लगे लेकिन वो अच्छी हो। आप इसका डिफरेंट सिनेरियो लेना, जिस तरह वो बाप हिदायत से दूर था, ऐसा बच्चा पैदा ना होता, नॉर्मल होता या कुछ और भी होता, तो हो सकता है वो और भी दूर चला जाता।
फेस इज नॉट द इंडेक्स ऑफ माइंड, कि अगर कोई हकीर दिखता है लेकिन उसमें क्या खूबियां हैं वो हमें नहीं पता है,
जी
जैसे
गुड, शाबाश। आप देखिए, फेस इज नॉट द इंडेक्स ऑफ माइंड। अक्सर तो कहते हैं ना, होता क्या है कि बास दफा हम कुछ लोगों को हकीर जानते हैं लेकिन वो हकीर नहीं होते। लेकिन यहाँ मुझे एक दूसरी चीज भी दिख रही है जो शायद आपने भी सोची है कि नहीं, और वो क्या है, हम इस शख्स को जिसकी कहानी पढ़ी है इस वक्त, अगर इस वक्त की दुनिया के नाते से देखें तो ये एक बिगड़ा हुआ शख्स था ना, तो हम तो फतवा दे आते, इसको हिदायत नहीं मिलनी। और इसकी बीवी को सोचिए कैसे इसके साथ रह रही थी, अगर वो औरत सब्र ना करती तो क्या इसकी हिदायत होती? असल में ये सीख रहे हैं आप और मैं इससे, इंसानों की जिस दुनिया में आप और मैं हैं, नंबर एक, हमेशा आइडियल हालात नहीं होंगे। हमेशा आपकी मेरी जिंदगी में हर चीज़ हमारी मर्जी की नहीं होगी, और हमेशा ये भी नहीं होगा कि आप जो सोचें वो हो जाए। अक्लमंद इंसान वो है जो शर में से खैर को लेकर आए। और इस पे आपको वो आयत भी तो याद आएगी ना, जो दुआ है सूरत आले इमरान में, अल्लाह सुबहाना ताला की शान क्या है कि अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्क मन तशा व तंजिल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर तुख्रिजुल हय्या मिनल मैत। खैर में से यानी जिंदा में से मुर्दा को और मुर्दा में से जिंदा को निकालता है। तो कभी किसी चीज़ को बेकार ना समझिए। आपकी ज़िंदगी में कोई एक इंसान ऐसा आ जाता है जो आपको एक आंख नहीं भाता, कल वही खैर का जरिया बनता है। आप इसको भी देख लीजिए कि इधर कहानी क्या थी, शौहर बिगड़ा हुआ है और बीवी नेक है। इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, बीवी बिगड़ी हुई है, शौहर नेक है ना? क्यों होता है ये सब कुछ हमारे साथ?
कि जो उस औरत की नेकी थी वो इतनी खामोश थी कि उसने अपने मर्द की बदी से कोई बदी नहीं ली और ना उनको सही करने की कोशिश करी बल्कि अपना काम किया
जी,
और अल्लाह पे भरोसा किया।
यानी अगर खुदा न खास्ता हम में से कोई अपने स्पाउस की तरफ से आजमाया जाए, मर्द है तो बीवी से उसकी मिजाज की नहीं, बीवी है तो मर्द नहीं, तो कोई बात नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि अगर तुम में से किसी को अपनी बीवी की एक चीज़ अच्छी नहीं लगती तो दूसरी देख ले, दूसरी अच्छी होगी ना। इसी तरह अगर आपको मुझे अपने हस्बैंड की कोई बात अच्छी नहीं लगती तो आप वो देख लीजिए जो अच्छी है। कुछ ज़रूरी है कि आपने ख़राबी चीज़ देखनी है? कुछ लोगों का मिजाज इतना गंदा होता है वो हमेशा ख़राब चीज़ें देखते हैं। छिलके दिखेंगे उनको फल नहीं दिखेगा, उनको मक्खियाँ दिखेंगी लेकिन उनको मीठे फल नहीं दिखेंगे। वजह क्या है कि जब आप और मैं किसी भी चीज़ को बैड मैनर से लेंगे ना, ख़राब होगी। आपका मेरा माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए, लोगों को पॉजिटिवली देखिए, उनके अंदर खराबियां ना ढूंढिए। जितना लोगों के अंदर खराबियां ढूंढेंगे हम उनको खराब कर देंगे। इग्नोर ग्रेसफुली, किल विद काइंडनेस। इस औरत ने असल में किया क्या है, किल विद काइंडनेस। लेकिन याद रखिए इसके लिए बड़े सब्र की जरूरत होती है। फतवा तो इसको मिल जाना था अगर किसी भी दीनदार से ये पूछती क्या मैं ऐसे शौहर के साथ रह सकती हूँ जो सारी रात घर ही नहीं आता। हालांकि इसमें देखिए कि इस शख्स की कोई किरदार की खराबी वैसी नहीं दिखी जिसको करप्शन कहते हैं या जिना बदकारी। उस सूरत में हालात बदल जाते हैं। इस मर्द की आदत क्या थी, रात को बाहर रहना। बातें सुनने से कुछ नहीं होता। यानी ये मैं आपको एक बड़ा बारीक नुक्ता समझाने लगी हूँ कि ये लड़का बाहर दोस्तों में रहता था, गीबत हंसी मजाक पान छालिया जिसको आप कहते हैं, यानी एक जरा अल्लड़ सा लड़का था। अगर किसी के शौहर में या बीवी में ऐसी भी खराबी हो ना, इट्स ओके। ये कभी नहीं हो सकता कि आपको पूरा बना बनाया एक फ्रेम में लगा हुआ हस्बैंड मिल जाए या बीवी मिल जाए। बहुत सारी चीज़ें आपने उनकी ठीक करनी होती है। आप अपने 10 लोगों को देखें खानदान के, आप अपने अम्मी माँ बाप को देख लें, नानी नाना को देख लें, दादी दादा को देख लें, सास ससुर को देख लें, खाला खालू को देख लें, फूफो फूफा को देख लें, यानी तकरीबन मैंने 6 रिश्ते गिने और 4 भी गिन लें, बहन और बहनोई को गिन लें। आप अपनी एक दोस्त और उनके हस्बैंड को कर लीजिए आइडियलाइज। क्या सारे आइडियल हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे फिल्मों में देखे सुने होते हैं। जिंदगी की गेम ही है, किसी की आप बेहतरी, कोई आपकी बेहतरी। अगर शौहर बीवी एक दूसरे से मोहब्बत नहीं भी करते ना, रिस्पेक्ट में रहें, तो एक का असर दूसरे पे ज़रूर आता है। और ये भी याद रखिए कि अच्छी बात का असर बिल आखिर ज़रूर आता है। क्या कहते हैं कि एक शख्स डाली डाली फिरता है, मतलब जैसे ब्रांचेज है ना, एक ब्रांच से उठा दूसरा, लेकिन जब उसने नीचे उतरना है ना, तो उसको तने के रास्ते आना पड़ता है। बिगड़े से बिगड़ा शख्स भी अपनी ज़िंदगी के आखिर में अपनी बीवी के साथ ठीक हो जाता है, और बिगड़ी से बिगड़ी औरत भी अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में अपने शौहर के करीब हो जाती है। आप इसकी दसियों मिसालें अपनी फैमिलीज़ और अपने घरों में देख सकते हैं। करना क्या चाहिए कि अपने साथी के साथ सब्र। हाँ, गलत पे आप अगर उनकी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे ना, फिर उनको एहसास भी नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि उस औरत ने गाहे बगाहे उसको एहसास दिलाया कि आप ऐसा ना करें, ये अच्छी बात नहीं, दूसरी ये बात नहीं, तीसरी नहीं। और कोई पॉइंट आप बताएं?
कंपनी मैटर्स।
कंपनी मैटर्स। वो शख्स बुरा नहीं था, उसकी बुरी दोस्ती ने उसको बुराई में डाल दिया। देखिए वही शख्स है ना, मिसाल देती हूँ, जैसे मैं आप कहती हूँ कि ये ग्लास है, वो शख्स एक बर्तन की तरह था। पहले उसकी आते देखें, और बेटे को मस्जिद में ले गया और बेटे का कुरान सुना, तो उसकी दिल की हालत बदल गई, और उसकी ज़िंदगी में जो कहानी थी वो क्या हुई, खैर अंदर से निकली ना। देखिए समझिए, इस ग्लास में पानी है तो मैं पीऊँगी तो मिलेगा ना, और अगर इसमें आप दूध डाल दें तो दूध निकलेगा ना, और अगर इसमें आप शरबत डाल देंगे तो शरबत निकलेगा ना। अंदर खैर थी तो निकली ना। बिलफर्ज अगर उस मर्द उस बाप के अंदर खैर होती ना, तो बेटे की इतनी खूबियाँ देकर फिर वो रोता कैसे, और उसके अंदर चेंज कैसे आती। आज भी दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं, यानी ये बच्चे के वाक्या पढ़ते हुए जो मुझे चीज़ आई, कल एक वीडियो किसी ने शेयर की, दुनिया का एक ऐसा खित्ता है कि जहाँ फजर से पहले उठकर रात के अंधेरे में बच्चे खुली जगह पे जमा होते हैं अपने उस्ताद के साथ, बिजली नहीं है वहाँ, अफ्रीका का एक ऐसा पसमानदा इलाका जहाँ जदीद सहूलतें भी नहीं हैं, और वहाँ लकड़ियों की आग जलाकर उस रोशनी में बच्चा बच्चा कुरान पढ़ रहा होता है। मैं जब ये कहानी पढ़ रही थी और वो सालिम के उस कुरान पढ़ने का जो मंज़र था, तो मैं ये सोच रही थी कि कितने आँखों वाले हैं लेकिन इन आँखों की कदर नहीं करते, कितने बिजलियों और रोशनियों और कुमकुमों में बैठे हुए हैं, कदर नहीं। इस वक्त भी मैं अपने ऊपर लेकर कहूँ तो देखिए 26 लाइटें आपके इस हॉल में चल रही हैं, आपको पता है 26 लाइट सिर्फ हमारे इस क्लासरूम के अंदर इस वक्त भी लगी हुई हैं। क्या आज सुबह से लेकर अभी तक जब तक मैं और आप आए, एक दफ़ा भी दिल में इस नेमत का एहसास हुआ कि 26 लाइट्स आर सर्विंग टू अस। रोज़ जलती हैं, जल रही हैं, कोई कह रही नहीं। मैंने तो ये भी चीज़ देखी है, जितना मैं बाहर जाती हूँ ना ट्रैवलिंग में, और अब तो बाहर ही रहती हूँ, आने से पहले अगली ट्रैवलिंग की प्रिपरेशंस हो जाती हैं, मैं नेमतों को भी बहुत देखती हूँ। आप यकीन करें कि ये जो आपको एक ज़मीन का टुकड़ा पुरसकून तरह का मिला हुआ है ना, ये एक नेमत है। ये आपको अल्लाह ना करे तब पता चले जब ये ना रहे। ये आपका माइक, मेरा माइक, ये मेरा लैपटॉप, ये मेरे लिए नेमते हैं। हर दिन नया माइक चेक होता था माँ, हर दिन नया इशू, नया वाईफाई। आपको कभी फील भी नहीं हुआ होगा, यानी आप तो चले पढ़ने आते हैं ना, आप सेम चेयर पे आकर रोज़ बैठते हैं मोस्टली। हम यहाँ आते हैं, हमारा वाईफाई खुद कनेक्ट हो जाता है, ट्रैवलिंग में पता चलता है, हर दिन जाकर पहले वाईफाई चेक करना है, आज कैसा होगा, ठीक होगा नहीं होगा, हर दिन का माइक चेक होता है, कुर्सी चेक होती है, कई जगह सिर्फ चेयर कंफर्टेबल होने की वजह से आई कांटेक्ट नहीं बन पाता। तो ये जो अल्लाह ने आपको मुझे दिया है ना जगह, ये टुकड़े, ये अल्लाह की नेमत है, और जितना इसका शुक्र अदा करेंगे उतनी नेमतें बढ़ेंगी। हर चीज़ को शुक्र की नज़र से देखा करें। और कोई नुक्ता बताइए इस कहानी का।
जब उसको घबराहट और परेशानी हुई तो उसने शैतान से पनाह मांगी अल्लाह ताला
जी
के पास
बिल्कुल,
से।
जब उसके दिल को घबराहट थी तो उसने औज़ बिल्लाही मिनश शैतान रजीम पढ़ा। और एक चीज़ बड़ी अहम है जिस पे अभी तक आपने तवज्जो नहीं दी। जी आप।
दूसरों का जो मजाक उड़ाता था उसकी जिंदगी में वही
जी,
मजाक
जो
उड़ाने लगा
दूसरों का
था।
मजाक उड़ाता था वो उसके अपनी जिंदगी में वही एक बच्चा ऐसा आ गया जिसकी आंखें नहीं। और
एक बात है कि अगर कोई बच्चा या कोई इंसान किसी में एक कमी हो तो अल्लाह ताला उसको किसी और नेमत
जी
से अलग
शाबाश, कि
नवाज
अगर
देता है।
किसी बंदे में एक कमी होती है तो उसको अल्लाह ताला दूसरी खूबी दे देता है। जी
तो
ठीक
कोई
है,
ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो पछतावा हो ना।
कोई ऐसा काम ना कीजिए जिस पे पछताना पड़े। ठीक है जी आप।
वो अपनी बुराइयों से भरा हुआ था लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने उसके बीच में कोई अच्छा काम
यानी
किया।
उसमें इतनी बुराइयां थी लेकिन अल्लाह उसकी हिदायत से मायूस नहीं थे। अच्छा एक बात अभी भी नहीं हुई, आपने उस माँ का सब्र नहीं देखा। 15 दिन हो चुके बच्चे को फौत हुए और माँ ने खबर नहीं दी। क्या फ़ोन नहीं था उसके पास, फेसबुक नहीं थी, व्हाट्सएप नहीं था। और यहाँ मुझे याद आ रही थी उम्मे सुलेम। उम्मे सुलेम बेटा था और बीमार था और अबू तलहा काम पे गए हैं, और जब वापस आते हैं पूछते हैं बच्चे का क्या हाल है, का पहले से बेहतर है, चलो लाओ खाना दो। सारे दिन के थके हुए थे काम करके, खेतों में से आए, खिलाया पिलाया, शोहर की ख्वाहिश पूरी की, उनको आराम करवा दिया, सो गए। सुबह उठे तो कहने लगी कि अगर कोई आपके साथ अपनी अमानत रखवाए और वापस मांगे तो आप क्या करेंगे। कहा शुक्र करूँगा कि अल्लाह ने अमानत को खैर से हकदारों के तक पहुँचा दिया। कहा फिर खुश हो जाइए, अल्लाह ने जो अमानत आपके पास रखवाई थी वो वापस ले लिए। इतना सब्र आज की औरत में है, ये सीखिए, और ये खुद भी सीखिए और अपनी बच्चियों को सिखाएं। कुछ औरतें सिर्फ मर्द के लिए हर वक्त घबराहट का जरिया बनती हैं, हर वक्त एक इमरजेंसी की कैफियत, अब ये हो गया, अब वो हो गया, अब ये हो गया। अल्लाह किसी को ऐसी आजमाइशों में ना डाले, अपने अंदर लाइए। देखिए वी शुड बी अ कंटेनर, कंटेन कीजिए। हाउ मच यू कैन कंटेन दिस इज़ योर वर्थ। ये ग्लास है ना, तो ये एक हाफ लीटर पानी ले रहे हैं ना, तो इसकी वैल्यू क्या है कि इसमें हाफ लीटर आ जाएगा। इसकी जगह अगर इधर जग रखते हैं तो उसमें 1 लीटर भी आएगा ना, और इसकी जगह इसमें एक छोटा सा कप रख दें और उसमें 2 में भी 3 घूंट आएंगे। आप अपने आप को एक कंटेनर बनाएं। आपकी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किल से मुश्किल घड़ियाँ आ जाएं, आपको देखकर किसी को एक पानी का कतरा बाहर नहीं है, छलका नहीं है, और अगर आधा गिरा उधर जा रहा है, उधर गिर रहा है, उधर गिर रहा है, तो ऐसा बंदा किसी काबिल नहीं होता। और यकीन करें ये गिला करना ना, मिसाल है कि एक बीवी और उसका शौहर केयरफुल, जैसे इस स्टोरी में है, अगर ये शिकवे करती रहती तो सालिम कुछ ना बनता। सेम थिंग, कभी शौहर को गिला होता है, मर्द को ये लगता है कि मेरी बीवी अपने बच्चों को सही नहीं पाल रही या उनकी टेक केयर नहीं कर रही, तो उसकी बजाय बाप बच्चों को टाइम देना शुरू कर दे। कोई माँ बाप को रोक नहीं सकती कि आप बच्चे को मस्जिद क्यों लेके जा रहे हैं। मुझे हर बात के बाद ये लग रहा है पहले अपने पाँव ज़मीन पर आएंगे, आप खुद को ही नीचे करेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला फायदा होगा। और आप देखिए कि ये कितनी एक हार्ट टची सी कहानी हो गई ना, और एक बच्चा पूरे घराने की खुशी का जरिया बना। और मैं पढ़ते हुए ये सोच रही थी कि थोड़े से ये फूल खिला फिर चला गया, जाना तो इसको था, लेकिन ये आया क्यों था, नेकी का सफीर बन के। कैसे, इसने किसको नेकी की सिफारिश की, बाप को की। और ऐसी ही चीज़ें ज़िंदगी में होती हैं, इनको परखा करें। अपने इर्द गिर्द रहते हुए लोगों को देखेंगे तो आपको इसका अंदाज़ा होगा। उसमें एक और चीज़ नहीं देखी आपने, अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए निकलना है ना सुन्नत, कौम फानजर, खड़े हो जाइए और आगाह कीजिए, वानजिर अशीरत अकल अकरबीन, और अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। क्या आज हमारी डिक्शनरियों में है ये चीज़, इंडो पाक कल्चर के तहत पलने वाले हम मुसलमानों की ज़िंदगी में नेकियों के मेयार में क्या दीन के काम के लिए आगे जाना पीछे निकलना इधर है। हम कहते हैं ये तबलीगी जमात का काम है, और जो तासुब बरतते हैं ना, वो फिर बड़ी रौंदा से कहते हैं ये तबलीगी है। मैं अपने आप को कहती हूँ बगैर किसी लगी लिपटी के, मैं कहती हूँ अगर कोई नाम रखना पसंदीदा होता ना, यानी हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने नाम दिया, इसलिए आज तक कभी आपको अपना नाम किसी ग्रुप जमात मसलक के साथ नहीं रखा। बट अगर कोई मुझे चॉइस दे कि यू विल पिक वन नेम, तो मैं अपने आप को तबलीगी कहती। बात समझ रहे हैं? कहना नहीं है फिरका नहीं बनना, जमात नहीं बनना, बट जो लफ्ज़ तबलीग और इबलाग और अल्लाह के दीन को फैलाना, ज़िंदगी का मकसद भी यही है। लेकिन जब हम इसको एक ख़ास सांचे में ढालकर दूसरी चीज़ों पे आ जाते हैं तो वो दुरुस्त नहीं। किसी ने अपनी एक चीज़ शेयर की थी ना, तो कहती मैं वहाँ जाती हूँ ऐसे इसी नाम से। मैंने कहा आप जाइए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन साथ कुरान भी पढ़िए। आप जब कुरान पढ़कर, यानी मैं इसको ऐसे कहती हूँ कि पहले तालीम फिर तबलीग, तालीम लिए बगैर या इल्म कुरान सीखे बगैर आप तबलीग करते हैं तो उसमें वो आपकी बात नहीं बनती ना। तो ये सिर्फ नाम है, कभी भी किसी नाम से तासुब ना रखें, लेकिन कम से कम हमारी ज़िंदगी में ये होना चाहिए। अच्छा 3 माह के लिए गए थे, तो अगर वो 2.5 माह में आ जाते तो अजर ख़त्म हो जाना था, या 40 दिन के लिए कोई निकले तो फिर अगर 40 पूरे ना हो तो अजर ज़ाया हो जाता है, ऐसी कोई बात। ये चीज़ें एक अपनी तौर पे किसी ने अगर अपने ऊपर रख ली, लेकिन अब ये सोच लिया कि इससे कम पे गया या बीच में आ गया गलत, तो ये फिर दुरुस्त नहीं होगा। ठीक है? और जितना ज़्यादा इस चीज़ को इंशाल्लाह हम नबी सल्लम की सीरत से रिलेट करके देखें सुनेंगे उतना फ़ायदा होगा। नेकी करनी हो ना, तो कोई बहुत ज़्यादा बंदे को इसबाब की ज़रूरत नहीं होती। एक ऐसा गांव है अफ्रीका का कि जहाँ का हर बच्चा हाफिज़ है, और मज़े की बात देखिए गुरबत इतनी है कि लोगों के पास कुरान भी नहीं है, मुसहफ नहीं है। एक शख्स हज पे गए और वहाँ उनको एक सोमाली शख्स मिले, सोमालीज हैं या अफ्रीकी ब्रदर हैं, तो उसने ऐसे कोई बात की कुरान की, तो उसने कहा अंता हाफिज़, तो उस शख्स को बड़ा बुरा लगा, कहेगा मैं क्या, मेरे शहर का तो हर बच्चा हाफिज़ है। उसने कहा वो कैसे, तो उसने फिर सुनाई अपनी कहानी कि जहाँ हम हैं वहाँ इतना मुश्किल है चीज़ों का पहुँचना, दूर जंगलों में के रहते हैं, कि हमारे घरों में मुसहफ भी नहीं होते। उस्ताद रोज़ सुबह आकर वाइट बोर्ड या वो जैसे चौक से लिखते हैं ना, उस पे चंद आयतें लिखता है, और हर स्कूल का जो बच्चा बच्चा है वहाँ से पहले वो आयतें अपनी कापी में लिखता है और फिर याद करता है। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन्नईम, फिर तुम ज़रूर नेमतों के बारे में पूछे जाओगे। अब तो अल्लाह ने हमारे घर ही इतने प्यारे बना दिए, तो अगर हमारे स्कूल भी प्यारे हैं तो क्या ये नेमत नहीं? आपको मुझे अगर इस वक्त इस कुर्सी की बजाय यहाँ नीचे बैठ के पढ़ना पड़ता तो कितने बैठते, और सर्दी यख होती और हीट ना चल रही होती तो कैसा लगता? हम तो इतने आराम तलब हो गए, अल्लाह ने फिर हमें नेमतें भी वैसी दे दी। ज़रा सी मुश्किल पड़ जाए तो हमारे कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्यों, वाई, दिस, दैट, देन। याद रखिए आपका दिल सच्चा मोमिन बन जाए, और जो नेमत अल्लाह आपको दे उसको लेकर इंजॉय कीजिए, और हर नेमत अल्लाह के रास्ते में बढ़ने का जरिया बन जाए आपकी, तो इंशाल्लाह फिर आप भी नेकियों के सफीर बनेंगे। तो आज नियत करते हैं फिर थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, पहले अपने ऊपर फिर बच्चों पे भी, कि फजर से पहले उठ के कुरान पढ़ना है, इन्ना कुरान अल फजरी काना मशहूदा, कि फजर के वक्त का कुरान जो है ये हाजिर किया जाएगा। फरिश्तों की तब्दीली का वक्त होता है, सारी रात के फरिश्ते जब वो वापस जा रहे हैं और दिन के काम लिखने वाले फरिश्ते वापस आ रहे हैं। जितना हम अपने आप को और अपने बच्चों को खींच के पालेंगे ना, हाथ थाम के पालेंगे, उतनी खैर होगी। बहुत ज़्यादा बिगाड़ और बहुत ज़्यादा उनकी बातों को मानना भी बाज़ दफ़ा ख़राबी का ज़रिया बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे तो हमने फ़ायदा उठा लिया, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे।